महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। उसमें द्वितीय स्थिति बंध अधिकार को देखते हुए दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर हम आ गए, 30। 24 संयोग द्वारों में से अभी हमने अद्धा छेद की प्ररूपना देख ली। उत्कृष्ट स्थितिबंध, जघन्य स्थितिबंध, उसकी आबाधा, कर्म निषेध की बात हुई थी। अब यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर अनुयोग के सर्वबंध और नो सर्वबंध, जो सर्वबंध नहीं उसको नो सर्व कहेंगे, यानी उत्कृष्ट स्थिति बांधती है तो सर्वबंध कहेंगे। वो बताएंगे अभी वो क्या किसको कहना। देखो, जो सर्वबंध और नो सर्वबंध है उसका यह निर्देश है। ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, इनमें से ओघ की अपेक्षा ज्ञानावरणीय हुआ है, वो ज्ञानावरणीय करना। ज्ञानावरणीय के स्थितिबंध का क्या सर्वबंध होता है या नो सर्वबंध होता है? सर्वबंध यानी मैक्सिमम जो निषेक तैयार हो गए उसको हम कहेंगे सर्वबंध। तो कहते सर्वबंध भी होता है और नो सर्वबंध भी होता है। सब स्थितियों को बांधता है इसलिए सर्वबंध होता है। सब स्थितियां यानी सब निषेक उसका बंध होता है इसलिए सर्वबंध कहेंगे, और उससे न्यून स्थितियों को बांधता है इसलिए नो सर्वबंध होता है। जब उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है तो सभी स्थितियां बंधी जाती है, यानी निषेक जो 3000 वर्ष और एक समय से लेकर ऊपर तक होते हैं उसको सभी स्थितियां बंधी ऐसा कहेंगे, और उससे कम बनता है स्थितिबंध होता है तो उसको हम कहेंगे नो सर्वबंध। इसी प्रकार 7 कर्मों का कथन करना चाहिए, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब विशेषत यहाँ ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के स्थितिबंध का सर्वबंध भी होता है और नो सर्वबंध भी होता है यह बतलाया है। सर्वबंध इन्हें जब उत्कृष्ट स्थिति बनती है तो निषेक कितने हो गए? मैक्सिमम हो गए, उसी को सर्वबंध का। सर्व स्थितियों को बांधता है, और जब कम स्थिति बंधेगी, मान लेते ना किसी ने अंत कोड़ा कोड़ी बांधी, 20 कोड़ा कोड़ी बांधी, तो उसके सभी स्थितियां नहीं बंधी, उसको क्या कहेंगे? नो सर्वबंध। हाँ, यह साथी क्यों कहा? 8 कर्मों में होता है ना,
आयु का लक्ष्य बताएंगे। नहीं, ये ज्ञानावरण की बात हो गई।
एवं सत्तन्नम कम, अच्छा अच्छा, ज्ञानावरण की जैसे वैसे अन्य 7 कर्म, ज्ञानावरण आदि 7 नहीं है, ज्ञानावरण 1 पर बताया वैसे अन्य 7 पर। इसी प्रकार शेष 7 कर्मों का चाहिए। नहीं तो लगता है कि आयु को छोड़ा क्या क्या, यानी देखो देखो अभी अभी ने ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा तो उसकी पांचवी लाइन, इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिए। ज्ञानावरण में तो बता दिया, बाकी शेष सात आयु लेकर सबका ऐसा ही कथन है। देखो अभी हम विशेषार्थ फिर पढ़ते। यहाँ ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों के स्थितिबंध का सर्वबंध भी होता है और नौ सर्वबंध भी होता है यह बतलाया है। जब विवक्षित कर्म की सब स्थितियों का बंध होता है, सब स्थितियां बनती है, उत्कृष्ट बंध होता है, उसी को जो सर्वबंध कहेंगे उसी को हम उत्कृष्ट स्थिति बंध भी कहेंगे, तब सर्वबंध होता है। अन्यथा यानी जब सब स्थितियां नहीं बनती तब नो सर्वबंध होता है। उदाहरणार्थ ओघ से ज्ञानावरण की सब स्थितियां 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। जब इन सब स्थितियों का बंध होता है तब सर्वबंध कहलाता है। जब इससे न्यून बंध होता है तब नौ सर्वबंध कहलाता है। इसी प्रकार अन्य सात कर्मों की अलग अलग सब स्थितियों का विचार कर सर्वबंध और नौ सर्वबंध कथन करना चाहिए। मार्गणाओं में विचार करते समय जिन मार्गणाओं में यह ओघ प्ररूपणा घटित हो जाए वहां ओघ के समान जानना चाहिए, और जिन मार्गणाओं में ओघ प्ररूपणा घटित न हो वहां आदेश से जहां जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यान में रखकर सर्वबंध और नौ सर्वबंध का विचार करना चाहिए। यानी जब एक इंद्रियों के लिए सर्वबंध कब होगा, जब एक सागर की स्थिति बनती है
पूरी एक सागर
मुनि में, तब उसके सर्वबंध कहलाएगा। देखो ये ऊपर जो बताया ना सवाओ ठिदी बंध दी, उसमें निषेकों की बात है, क्योंकि उतना ही तो उत्कृष्ट और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। उदाहरणार्थ चारों गति, क्योंकि चारों गतियों में उत्कृष्ट बंध हो सकता है, यानी ओक के समान कौन कौन सी मार्गणा है वो बता रहे। पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, तीन योग वाले, तीन वेद, चार कषाय, मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान, क्योंकि उत्कृष्ट बंध तो वहां होगा, विभंग ज्ञान, असंयत, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, कृष्णादि तीन लेशा, भव्य अभव्य, मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्वी, संज्ञा और आहारक, इन मार्गणाओं में ओघ के समान सर्वबंध और नौ सर्वबंध होता है, तथा शेष मार्गणाओं में आदेश से सर्वबंध और नौ सर्वबंध घटित करना चाहिए। करना चाहिए जब उन्होंने बताया था, शेष मार्गणाओं में आदेश से बताना है। जैसे अभी यहाँ कौन कौन सी मार्गणा उन्होंने ली है, तो चारों गति ली है और पांचों जाति ली है। परंतु अगर हम एक इंद्रिय की बात करेंगे, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रियों में, हाँ, तो सागर वाला जो ज्ञानावरण के लिए तो अलग अलग होगा ना सर। तो सागर का तीन सप्तम बनता है, तब वो सौ सर्वबंध होगा, और कम हुआ तो नौ सर्वबंध कहेंगे। यानी जो जिस मार्गणा का उत्कृष्ट है वो उस मार्गणा के लिए सर्वबंध कहलाएगा। ये ख्याल में आई बात, क्योंकि अलग अलग मार्गणों में अलग है। जैसे द्विंद्रिय के लिए 25 सागर वाला उत्कृष्ट बंध है मोहनीय में, तो उसको सर्वबंध कहेंगे। अब आयु कौन कितने बांधता है उसके अनुसार मार्गणों में उसकी बात होगी। ओग से तो इन जनरल बात बताएंगे कि 33 सागर वो तो सर्वबंध है, और लब्धि पर्याप्त की आयु बांधी वो तो मिनिमम है, तो उसमें जितने भेद है वो सारे नौ सर्वबंध के हो। अब ये दो तीन और चार, चार दो और तीन हो गए ना,
अभी चार और पांच
है। अभी चार और पांच है, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। ये हम नंबर जो बता रहे हैं अनुयोग द्वारों के नंबर बता रहे। पहला अनुयोग द्वार अद्धा छेद का हुआ, दूसरा सर्वबंध, तीसरा नौ सर्वबंध, पेज नंबर 30। अब यहाँ से जो प्ररूपणा होने वाली है उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध। अभी यहाँ तो केवल बंध इतना ही कहा है, पर हमारा पूरा प्रकरण पूरी पुस्तक ही स्थिति बंध की, तो यहाँ स्थिति बंध के बारे में ही कथन चल रहा है। बार बार वो बताएंगे नहीं बीच में। देखो जो नीचे से तीसरी लाइन पेज नंबर 30, जो उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध है उसका यह निर्देश है। यानी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दो ही कंपेयर करेंगे। जब जघन्य की बात करेंगे तो जघन्य के साथ केवल अजघन्य कहेंगे, एट ए टाइम चार भेद नहीं करेंगे कि उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी अजघन्य भी जघन्य, ऐसे चार नहीं करना। उत्कृष्ट जो नहीं है वो सारा अनुत्कृष्ट, जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य। उत्कृष्ट में स्थितिबंध कितना हुआ वो हुआ, और उसमें निषेक कितने बने वो सर्वबंध में आ जाएगी। उन्होंने विशेषार्थ में वो बात बराबर क्लियर नहीं की है, उन्होंने उत्कृष्ट बंध को ही सर्वबंध कर दिया। यानी उसमें निषेक कितने बने, सभी स्थितियां बंधी, यानी 3000 वर्ष और एक समय से लेकर तीस कोड़ाकोड़ी सागर तक की सभी स्थितियां बंधी। और वो कब पॉसिबल है, जब उत्कृष्ट स्थिति बंध हो रहा है तभी। यानी जो जब उत्कृष्ट है तो सर्वबंध ही है और अनुत्कृष्ट है तो नो सर्वबंध ही है, परंतु अपेक्षा अलग अलग
है। ऐसे तो देखा जाए तो उत्कृष्ट होगा तभी सर्वबंध ही होगा,
वही तो मैंने कहा ना। उत्कृष्ट हो तभी सर्वबंध होगा, अदरवाइज
नो
सर्वबंध होगा। देखो जो उत्कृष्ट बंध और अनुत्कृष्ट बंध है उसका यह निर्देश है, ओग और आदेश। ओग से ज्ञानावरणीय के स्थिति बंध का क्या उत्कृष्ट बंध होता है या अनुत्कृष्ट बंध, उत्कृष्ट बंध कितना होता है वो नहीं पूछा, वो तो आधा छेद में आ गया। बंध कितना होता है, कोई जीव कितना बंध कर सकता है, तो कहते उत्कृष्ट बंध भी होता है अनुत्कृष्ट बंध भी। सबसे उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है इसलिए उत्कृष्ट बंध होता है, और उससे न्यून स्थिति को बांधता है इसलिए अनुत्कृष्ट बंध होता है। इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिए, यानी शेष सभी अन्य भी सात कर्मों में यही बात हो जाएगी। हाँ हाँ, सर्वबंध में निषेक कितने बने, कितनी स्थितियां बनी। हाँ, और यहाँ जो हम कहते स्थिति बंध इतना हुआ, अंतिम निषेक की स्थिति कितनी बंधी, हम कहते इस समय कितना स्थिति बंध हुआ, तो किसी को अंत कोड़ा कोड़ी का हुआ तो उसको कहेंगे अनुत्कृष्ट स्थिति बंध हुआ, किस कोड़ा कोड़ी का हुआ उसी को नो सर्व भी कहेंगे। नहीं, निषेक कितने बने वो सर्व में आते हैं। और यहाँ बांधी उत्कृष्ट बांधी स्थिति बंध कितना हुआ, उत्कृष्ट हुआ, तीस कोड़ा कोड़ी सागर इतनी स्थिति बांधी, बनते समय स्थिति कितनी बांधी और उसमें निषेक कितने बने तो वो कहेंगे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट। यानी इसी प्रकार सात कर्मों का यानी अन्य भी सात कर्मों का कथन करना चाहिए। इस प्रकार एकार हुआ, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, क्योंकि हर एक मार्गणा का अपना अपना उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, तब उसको उत्कृष्ट कहेंगे अदरवाइज अनुत्कृष्ट कहेंगे। विशेषार्थ सबसे उत्कृष्ट स्थिति बंध की उत्कृष्ट बंध संज्ञा है, जैसे ज्ञानावरण का तीस कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध होने पर अंतिम निषेक की उत्कृष्ट स्थिति बंध संज्ञा है ना, और इससे न्यून स्थिति बंध होने पर वह अनुत्कृष्ट स्थितिबंध कहलाता है। शेष विचार सर्वबंध और नो सर्वबंध के समान जानना चाहिए। अब जघन्य और अजघन्य बंध प्ररूप में देखो, अभी हम जब तीस कोड़ा कोड़ी सागर बनते हैं तो अनेक निषेक बने, तो तीस कोड़ा कोड़ी पर एक निषेक बना है ना, वहां पर जब कम स्थिति बनती है अंत कोड़ा कोड़ी तो अंतिम निषेक कहाँ पड़ा है, अंत कोड़ा कोड़ी पर पड़ा है, ये कहना। यानी जितनी स्थिति बंद जितना स्थिति बंद होता है उतने समय तक का वो निषेक रचना होती है, अंतिम निषेक वहां तक पड़ा रहता है। अब जघन्य और अजघन्य हमने देखा था पहले अध्याय छेद में, प्रत्येक कर्म का जघन्य स्थिति बंध कितना होता है वो हमने देखा था, उसको जघन्य कहेंगे, और जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य कहलाएगा, उत्कृष्ट को भी अजघन्य में जमा कर देंगे। जो जघन्य बंध और अजघन्य बंध है उसका यह निर्देश है, ओग और आदेश। ओग से ज्ञानावरणीय के स्थिति बंध का क्या जगन्य बंध होता है या अजगन्य बंध होता है? तो कहते जगन्य बंध भी होता है और अजगन्य बंध भी होता है। वो किसके होता है, कब होता है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं, वो स्वामित्व में बताएंगे। जगन्य ये हो गया। सबसे जगन्य स्थिति को बांधने वाले के जगन्य बंध होता है और इससे अधिक स्थिति को बांधने वाले के अजगन्य बंध होता है। इसी प्रकार सात कर्मों का कथन करना चाहिए, यानी सभी आठों कर्मों में यही बात घटित होती है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नारकियों में आयु कर्म का अजगन्य स्थितिबंध होता है।
नारकी को अलग लिया, नारकी को अलग लिया तो देव को भी अजगन्य बंध होता है।
नारकियों में आयु कर्म का अजगन्य स्थितिबंध होता है, इसी प्रकार सब अपर्याप्तकों के सात कर्मों का अजगन्य बंध होता है। यानी अपनी अपनी अपेक्षा नहीं, ओक की अपेक्षा लेना है उसमें।
नहीं तो देव को भी अजगन्य ही होगा ना आयु कर्म।
हाँ होगा ना,
तो यह खाली नारकियों को
एवं एक इंद्र का अंतर्मूर्त प्रमाण होगा। सब जहनम नेरी ऐसे आयुग एक फुट नंबर एक नीचे मूल प्रतव आयुग 900 बंदो इति पाठ।
ये आयु का लब्धि पर्याप्त है।
जरा सुनो, मैं नीचे क्या पढ़ रही हूँ उसको देखो। निरय ऐसो आयुग अजहन बंदो ऐसा ऊपर लिखा है प्राकृत में, मिला ना नीचे से, तो तीसरी लाइन है ना उसमें 41 पॉइंट में। और उसका नीचे क्या लिखा है, मूल प्रतव मूल प्रत में लिखा है आयुग 900 बंदो इति पाठा। अच्छा, उसमें अजहन स्थिति बंध के अवेज उसके बदले 900 बंदो लिखा है। मूल प्रतो कम्मानम 900 बंदो इति पाठा।
आयु का जगन्य बंध तो लब्धि पर्याप्त के आयु बांधेगा वो जगन्य कहलाएगा। तो देव को भी अजगन्य बंधी होगा ना, क्योंकि देव भी लब्धि पर्याप्त के आयु नहीं बांधता है। तो यहाँ पे खाली नारकियों,
वो नारकियों में इसलिए कि वो पंचेंद्रिय की आयु बांधेगा।
पर पंचेंद्रिय के भी जगन्य आयु तो लब्धि पर्याप्त की होगी, तो वही जगन्य।
अभी अभी ऐसा नहीं लेना है, क्यों लिखा है कुछ तो। हाँ, पर्याप्त की आयु बांधता है वो, अपर्याप्त की नहीं बांधता, देवी नहीं बांधता है। परंतु यहाँ आगे एक वाक्य लिखा है, कितने ही आचार्य अपने अपने स्थिति बंध की अपेक्षा जगन्य बंध और अजगन्य बंध कथन करते हैं, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक उग को ध्यान में रखकर कथन करना चाहिए। यानी मार्गणा अगर लेते हैं तो उस मार्गणा की अपेक्षा जगन्य अजगन्य कह सकते हैं। जैसे मार्गणाओं में नारकी जगन्य बंध अंतर्मूर्त का करेंगे आयु का, और उत्कृष्ट बंध पूर्व कोटि का करेंगे, तो उनके लिए वो जगन्य अजगन्य होगा। कुछ तो छूट गया होगा शायद यहाँ पर।
हाँ,
इसी प्रकार सब अपर्याप्तों के सात कर्मों का अजगन्य बंध होता है। वो तो समझ में आ भी ऐसी बात है ना, क्योंकि जगन्य बंध तो पर्याप्तों के ही होता है, परंतु नारकियों में वो अजगन्य होता है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आयु की बात है वहां पर। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ओग को ध्यान में रखकर कथन करना चाहिए। अब ये हमने देखे सर्व नौ सर्व, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य। अब यहाँ सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव, ये 8, 9, 10 और 11 चार बातें एट ए टाइम बताएंगे। देखो सादी किसको कहेंगे, स्टार्टिंग है उसको सादी कहेंगे। अनादि परंतु यहाँ स्थिति बंध में लगाना, जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो सादी होगा क्या अनादि होगा? हाँ, अनुत्कृष्ट तो अनादि से कह सकते हैं हम उसको।
हाँ,
वो ध्रुव है कि अध्रुव है?
जैसे
ओ अंतर्मूर्त की नहीं ली थी क्या? कहाँ लिया? 24 पेज पर। सम्यक तो अवस्था में
तो समय दृष्टि का बात है,
समय दृष्टि की बात है, वो नारकी समय दृष्टि की बात है। पर हमने अंतर्मूर्त वाली बात देखी थी, नारकियों में पहले देखा था। न मुझे क्या कहना है, अकेले नारकियों की आयु देखो ना,
तो देव जितनी जगह की आयु बांधता है उतनी।
नीचे से तीसरी लाइन देखो, पेज नंबर 24 पर आदेश से जो बताया था नारकियों में आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध अंतर्मूर्त प्रमाण है।
और देवगौर ने उसको साथ में ही लिया है वहाँ पे भी,
और सभी बाकी सभी पृथ्वियों में सामान्य नारकियों के समान ही आयु का है, यानी सभी नारकी आयु कर्म अंतर्मूर्त का बांध सकते हैं। और इसी को उन्होंने आयु कर्म में अजगन नहीं होता इतना ही कहा।
तो
हाँ, पर वो बांधने वाले नारकी है, समान नहीं है, वो तो बात सही है। इसमें नहीं, इसमें वो नहीं है, ये नारकी कौन सी बांध रहे उसकी बात है। नारकियों में आयु कर्म का बंद कर रहे, नरकायु की बात नहीं रहे। यानी नारकी वो पर्याप्त की आयु बांधेंगे इस तरह से उसका अभ्यास है, ये नहीं अर्थ होता है, पर देव भी उतना ही करेंगे।
देव के एक दिन का बंद कम होता है,
पर्याप्त का ही करते हैं वो भी।
तो वो पर्याप्त का वहाँ पे एक दिन,
परंतु यहाँ परंतु देव एक इंद्रिय का करेंगे वो छोटा हो सकता है, और पंचेंद्रिय का छोटा भव है वो बड़ा हो सकता है, इस तरह से हम उसका अर्थ ले सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं।
यही घटित होता है,
पंचेंद्रिय की मिनिमम आयु और एक इंद्रिय पर्याप्तम की मिनिमम आयु, इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। पर्याप्त एक इंद्रियों से पर्याप्त पंचेंद्रियों की कंपेरिजन है।
फर्क पड़ता है पर्याप्त की आयु पांचों,
वो जघन्य आयु पता नहीं है,
के लिए टाइम ज्यादा लगता है छह पर्याप्त के लिए
मालूम नहीं, वही अरविंद भाई देख रहे, पर्याप्तों की कंपैरिजन नहीं होगी।
समय के अंतरिक्ष में कुछ तो
नहीं, पर्याप्तों की नहीं है, पर्याप्तों की यानी एक इंद्रिय पर्याप्त की आयु वो तो बड़ी आयु बताई है, जघन्य तो अंतर्मूर्त ऐसा ही कथन होता है, पर एक इंद्रिय का जो अंतर्मूर्त है और पंचेंद्रिय का जो अंतर्मूर्त है उसमें डिफरेंस है कि नहीं है मालूम नहीं है अपने को। अब हम आगे बढ़ेंगे, साधि अनादि ध्रुव और अध्रुव की बात यहाँ चल रही। जो साधि बंध अनादि बंध ध्रुव बंध और अध्रुव बंध है उसका यह निर्देश है, ओग और आदेश। उनमें से ओग से सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य स्थिति बंध। क्या सादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है, तो कहते हैं सादी है और अध्रुव है।
ये तो बराबर है क्योंकि जघन्य की अपेक्षा है,
और अजघन्य स्थिति बंध तो अनादि से होगा। फिर से क्या पूछा था उन्होंने, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट होता रहता है इस, और लगातार उत्कृष्ट भी नहीं होता और कायम अनुत्कृष्ट ही रहा ऐसा भी नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे,
सादी
और अध्रुव कहेंगे। फिर से दोबारा सोचना, देखो उत्कृष्ट स्थिति बंध कब होता है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि वो पर्याप्त जीव है संकलेश परिणाम में करेगा, तो जब तक वो उत्कृष्ट नहीं था तो अनुत्कृष्ट कर रहा था ना, तो उत्कृष्ट साधी हो गया, उत्कृष्ट के बाद फिर वो लगातार उत्कृष्ट तो चलता नहीं है कभी भी, तो उत्कृष्ट के बाद क्या होगा उसका?
अनुत्कृष्ट,
वो भी शादी होगा। पर जो जघन्य है वो कैसा होगा? क्योंकि जघन्य कब होता है? नौवे या दसवें में, वो भी शादी होगा। अभी रहा कौन सा? अजघन्य। तो जब तक जघन्य ऊपर नौवे दसवें में नहीं हुआ शपक श्रेणी में, तब तक अनादि से क्या था?
अजघन्य।
तो अजघन्य कैसा है? अनादि से है।
खाली जघन्य में शादी,
अजघन्य वो अनादि से है। तो अजघन्य है अनादि से, वो अभव्य में तो ध्रुव रहेगा, ध्रुव रह सकता है, और वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो अध्रुव भी हो जाएगा। तो देखो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, 32 पेज पर सेकंड लाइन, अजघन्य स्थिति बंध क्या शादी है क्या अनादि है, क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है, यानी प्रश्न पूछे गए। तो कहते हैं शादी है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है, क्योंकि अजघन्य स्थिति बंध अभी आप
तो
शादी, अभी शादी घटित करो अश्विन भाई।
अजघन्य स्थिति बंध शादी,
शादी कैसे होगा? वही हम
सुनो, शपक श्रेणी में तो जघन्य होता है
बिल्कुल।
अच्छा बंध रुक गया और पीछे चालू हो गया।
ग्यारहवें गुणस्थान में स्थिति बंध ही नहीं है, स्थिति बंध था ही नहीं, अब वो स्थिति बंध शुरू हुआ, और जो शुरू होगा तो वो अजघन्य ही होगा, क्योंकि वहाँ जो लौटा है ग्यारहवें में से नीचे, तो क्षपक श्रेणी में जो जघन्य हुआ था उसके तो चार गुना हो जाएगा, क्योंकि चढ़ते समय दो गुना, उतरते समय और उससे भी दो गुना, यानी वो अजघन्य ही कहलाएगा। हमें तो लगता है कि वो तो अनादि तो है ही है, शादी कैसे हो सकता है, क्योंकि क्षपक श्रेणी वाला दोबारा नीचे नहीं आएगा, परंतु बंद रुक गया था और फिर शुरू हुआ, इसलिए उसको शादी कहेंगे। देखो अजघन्य जो है वो शादी भी है अनादि भी है। शादी क्यों? उपशम श्रेणी से उतरते समय, और उतरते समय भी क्यों? क्योंकि बंद ही नहीं था और फिर शुरू हुआ, और जो शुरू हुआ वो अनुत्कृष्ट ही शुरू हुआ। ध्रुव किसके लिए? जो अभव्य है, जो कभी क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, उसके लिए वो ध्रुव ही कहलाएगा। और अध्रुव चढ़ के वापस की बात नहीं है, अध्रुव इसलिए कि पहले बंद ही रुक गया था, उसलिए भी हम अध्रुव कहेंगे, या अभी वो बंद ही मिटने वाला है,
जघन्य हो गया,
जघन्य हो जाएगा और फिर बंद मिट जाएगा, तो इसलिए अध्रुव कहेंगे। यानी वो अजघन्य जो स्थिति बंध है वो चार प्रकार का है, और उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य जो है वो शादी और अध्रुव है। ख्याल में आई ये बात? फिर शादी बंध कब? अभी हमारी बात स्थिति बंध की चल रही है, स्थिति बंध कब तक है? तो दसवें तक है। अब ये जो हम साधारण स्थिति बंध हो रहा है कब से? अनादि से हुई रहा है, परंतु जघन्य होता है कि उत्कृष्ट होता है, क्या अजघन्य होता है कि अनुत्कृष्ट होता है, इस तरह से हमको सोचना है। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के बारे में पहले हम सोचेंगे, अनादि से क्या उत्कृष्ट था उसका?
नहीं,
क्योंकि जब उत्कृष्ट नहीं था तो अनुत्कृष्ट था, उसमें से वो उत्कृष्ट हुआ, तो उसके पहले अनुत्कृष्ट था, तो उत्कृष्ट को शादी कहेंगे। और अनुत्कृष्ट कब कहेंगे हम? वो भी उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होता रहता है, वहां पर भी वो शादी उसकी हो जाती है। नहीं, परंतु उत्कृष्ट जो बंद है वो शादी है क्या? आपका ये प्रश्न है। एक केंद्रियों में क्या है? वो तो मार्गणाओं में आप सोच रहे हैं। आदेश में भी उनके लिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होता रहेगा। मार्गणाओं में भी वो उनका देख दो, वो बात आगे बताई। शेष मार्गणाओं में भी यानी उसको शादी और अध्रुव ही प्राप्त होते थे, उनको चारों के लिए। देखो मार्गणाओं के लिए जो जघन्य हो सकता है ना, उनके एक केंद्रियों के लिए जघन्य भी हो सकता है, तो उनके लिए जघन्य अजघन्य भी शादी कहेंगे। नहीं समझे, मार्गणा के लिए वो तो हम कहेंगे ना, उनका उत्कृष्ट भी होगा अनुत्कृष्ट भी होगा, जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा, क्योंकि वो सागर में से इतना कम करो तो जघन्य हो गया। जैसे ओघ में जघन्य कब है तो नौवे दसवें में, क्षपक श्रेणी में, ऐसे मार्गणाओं का जघन्य अपने अपने जो होता है कभी भी हो सकता है, तो उसमें अलग बात है। अभी तो हम ओक से बात कर रहे हैं। ये समझ में चार बातें, सादी अनादि पहले से है, कौन सा अनुत्कृष्ट भी कहेंगे वो, ये सॉरी अनादि से कौन सा है जघन्य है वो अनादि से, क्योंकि जघन्य जो क्षपक श्रेणी में होता है उसके पहले सारा अजघन्य ही था, यानी जो अनुत्कृष्ट भी था और उत्कृष्ट भी था वो सब अजघन्य में आ गया। अब जो कभी क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा उसके लिए ध्रुव है, हाँ, और अध्रुव क्षपक श्रेणी चढ़ के गया वो उसके अध्रुव, यानी अजघन्य पर ये चारों बातें घटित होती है कि ये सादी अनादि ध्रुव अध्रुव किसमें लगाना है, चार प्रकार पर लगाना है कि उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है कि जघन्य है कि अजघन्य, उसमें से एक एक ले लो और उस पर लगाना। आप बताओ अश्विन भाई, उत्कृष्ट स्थिति बंध इन चार में से कैसा है, सादी है अनादि है ध्रुव है कि अध्रुव है?
सादी
और अध्रुव है। अब प्रेरणा बिना आप बताओ, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध है वो कैसा है, चारों कैसा है? हाँ, अनुत्कृष्ट।
हाँ,
अभी आपको नहीं पूछा। हाँ,
चारों है ना,
अनुत्कृष्ट कैसे, अनादि से अनुत्कृष्ट ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट के बाद उसको सादी कहेंगे, ख्याल में ना, क्योंकि अनादि यानी कोई ऐसे पॉइंट ही नहीं है ना जिसको अनादि कहेंगे, अनादि यानी कोई बिगिनिंग ही नहीं है, तो कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट होता रहा कभी ना कभी, तो वो सादी हो गया, अनुत्कृष्ट है वो सादी है। तो क्या कायम अनुत्कृष्ट रहेगा कि कभी उत्कृष्ट भी होगा? हाँ, तो सादी और अध्रुव। ऐसा ही जो जघन्य है, जघन्य है मयंक भाई कैसा होगा, अनादि से जघन्य था क्या? श्रेणी में जाके जब वो जघन्य होता है तो जघन्य जो है वो सादी हुआ, सादी है तो कायम जघन्य रहेगा? अरे जघन्य होकर वो तो बंध से रहित होने वाला है, अध्रुव है। इसलिए उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी और जघन्य भी सादी और अध्रुव है। अब रहा अजघन्य, अनादि से अजघन्य ही था, जब तक क्षपक श्रेणी के अंत में नहीं जाता है तब तक वो अजघन्य ही था, तो अनादि से था, परंतु वो उसका सादी कैसे हो सकता है कि स्थिति बंध ही रुक गया, जघन्य होकर वापस आया ऐसा नहीं हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं स्थिति बंध कब होगा, तो ग्यारहवें में, और फिर नीचे आया तो शुरू हुआ, शुरू हुआ तो कैसा शुरू हुआ, तो अजघन्य ही शुरू हुआ, इसलिए उसको सादी भी कहा, यानी अनादि से तो था ही था, ग्यारहवें से नीचे आने पर सादी भी हुआ। दूसरी बात, अब ध्रुव रूप से है क्या, ध्रुव से है, जघन्य है वो कैसा है, अध्रुव ही है। हम अजघन्य की बात करें, अजघन्य की बात करें, अजघन्य वो कैसा है, ध्रुव भी होगा अभव्यों में और अध्रुव भी होगा, क्योंकि जघन्य करके तो मुक्त चला जाएगा।
ये ओके अपेक्षा,
हाँ, अभी पूछो,
उत्कृष्ट है, अरे अनुत्कृष्ट है वो अनादि अनंत हो जाएगा ना नित्य निकोज में, ओके अपेक्षा,
ओके अपेक्षा, फिर आप एक मार्गणा लगा रहे हैं, ओके अपेक्षा सभी जीवों में लगाना है आपको, नित्य निगोद में अगर ओके अपेक्षा भी लगाए तो, परंतु उसकी बात यहाँ नहीं ली है, परंतु वो अजगन्य उसको भी दे सकते हम,
अजगन्य अनादि हो जाएगा,
अजगन्य होता है तो ध्रुव में आ ही गया, ध्रुव में आ गया। आपका भी यही प्रश्न था ना, वो अजगन्य में आ जाएगा निगोद की ओक की अपेक्षा अगर निगोद जीवों को अनादि से वो
नित्य निगोद
उसको अजगण्य कहेंगे, वो तो चारों हो जाएंगे। विशेषत कर्म का जो बंध रुक कर पुनः होता है वह साधि बंध कहलाता है। अभी यहाँ कौन सा है, उत्कृष्ट रह गया क्या? अच्छा, ऊपर से चौथी लाइन रह गई है, 32 पेज। इसी प्रकार नहीं, आयु कर्म के रह गया, आयु कर्म के चारों ही साधि और अध्रुव होते हैं। देखो देखो, आयु कर्म तो बंधना शुरू होता है ना, कभी तो बनती है, आठ अपकर्ष काल में बनती है, अंतर्मूर्त तक बनती है, यानी वो तो आदि है ही, साधि है। और कैसे होते हैं अध्रुव, अध्रुव क्यों, अंतर्मूर्त बनकर रुकती है। तो चारों किसके लिए लगाए, नहीं चारों आयु नहीं है, आयु के चारों बंध। हाँ, यानी आयु उत्कृष्ट बनती है, वो साधि है क्या अनादि है,
साधि
है। ध्रुव है क्या अध्रुव है,
अध्रुव
है। अब ऐसे अनुत्कृष्ट आयु बंधी, उसके लिए भी वही, क्योंकि बनते नहीं थी, बंधना चालू हो गया, साधि हो गए, अंतर्मूर्त के बाद रुक गई, अध्रुव हो गए। अब जगन्य भी आयु बनती है, उसके लिए भी यही घटित होगा। यानी आयु कैसे भी क्यों ना हो, उत्कृष्ट हो अनुत्कृष्ट हो, जगन्य हो अजगन्य हो, चारों के लिए क्या कथन है, साधि और अध्रुव। ये ख्याल में आई बात, आयु बंध अंतर्मूर्तक ही होता है और उसकी बिगिनिंग होती है और एंड होता है, इसलिए उसको साधि और अध्रुव कहा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक शेष सब मार्गणाओं में साधि स्थिति बंध आदि, साधि आदि है ना, साधि अनादि ध्रुव और अध्रुव जो कहलाना है, वो ओग के साथ, ओग से साध कर जानना चाहिए। अभी एक होता है ओक की अपेक्षा उत्कृष्ट, और हम कहेंगे मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, साधी अनादि, वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि मार्गणा ही साधी होती है। विशेषात कर्म का जो बंध रुक कर पुनः होता है वह साधी बंध कहलाता है, और बंध विच्युत्ति के पूर्व तक अनादि काल से जिसका बंध होता आ रहा है वह अनादि बंध कहलाता है। यहाँ प्रकृतियों पर नहीं लगाना है, हमें स्थिति बंध पर लगाना है, और वो भी स्थिति बंध कैसा, उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, जघन्य के अजघन्य है, उस पर हमको ये साधि अनादि लगाने हैं। ध्रुव बंध अभव्यों के और अध्रुव बंध भव्यों के होता है। ये चारों जो स्थिति बंध बताए हैं, कौन से, साधि अनादि ध्रुव अध्रुव, ये चारों ही उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य इन चार भेदों में घटित करने पर 16 प्रकार के होते हैं। पहले साधारण हमने साधि अनादि स्थिति बंध साधि है कि अनादि इस तरह के बता दिया, अब उसमें ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य में इन चारों को लगाना है जो अभी हमने लगाया था। आगे आठों कर्मों का आश्रय कर इसी विषय का खुलासा करते हैं। आयु के बिना, क्योंकि आयु में हमने देखा था उत्कृष्ट हो अनुत्कृष्ट हो जघन्य अजघन्य हो उसमें साधि और अध्रुव लगते हैं, इसलिए आयु के बिना ज्ञानावरण आदि सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थिति बंध कादाचित होते हैं, यानी कभी कभी होते हैं, तथा जघन्य स्थिति बंध क्षपक श्रेणी में होता है। इसलिए ये तीनों साधि और अध्रुव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। ये तीनों यानी कौन से प्रेरणा बेन, ये तीनों ही साधि और अध्रुव होते हैं। जघन्य, बहुत अच्छा,
जघन्य को छोड़ के तीन ना,
जघन्य को लेके तीन और जघन्य को छोड़ के, क्योंकि अजगण्य तो अनादि से, यानी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य के लिए ये बात हो रही है, वो साधि और अध्रुव है। किंतु इस तरह अजगण्य स्थिति बंध कादाचित नहीं होता, क्योंकि जब तक जघन्य नहीं हुआ तो अनादि से अजगण्य ही था, क्योंकि जघन्य स्थिति बंध के प्राप्त होने के पूर्व तक अनादि काल से जितना भी स्थिति बंध होता है वह सब अजघन्य कहलाता है। तथा उपशम श्रेणी में उक्त सात कर्मों की बंध विच्छित्ति होने पर पुनः उसका अजघन्य स्थिति बंध होने लगता है। आप कहेंगे यहाँ वेदनीय बंध रहा है, पर वेदनीय बंध रहा है पर उसका स्थिति बंध नहीं हो रहा है। स्थिति बंध वेदनीय का कहाँ तक है? दसवें तक। इसलिए अजघन्य स्थिति बंध में सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं। स्थिति बंध महत्व की बात है ना, यहाँ स्थिति नहीं बनती ऊपर, यहाँ बंधने लगेगी। आयु कर्म में उत्कृष्ट आदि चारों विकल्प, यानी आयु कर्म उत्कृष्ट बंधे, अनुत्कृष्ट बंधे, जघन्य अजघन्य बंधे, उसमें सादि और अध्रुव दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि आयु कभी तो बंधना शुरू हो जाती है और अंतर्मुहूर्त में बंद हो जाती है। यह स्पष्ट ही है क्योंकि आयु कर्म का सब जीवों के कादाचित का बंध होता है। अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गणा एक तो कादाचित का नहीं है। क्या कहा? मार्गणा ये सादी नहीं है। अनादि से अचक्षु दर्शन और भव्य तो बना रहा और भव्य रहेंगे चौदहवें गुणस्थान तक। तो जो ऐसा ओग में घटित हुआ है वैसे इन मार्गणाओं में वही का वही घटित होगा। क्या कहा? अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गणा एक तो कादाचित का नहीं है। अन्य मार्गणा कैसे? गति मार्गणा, एक गति से दूसरे में जाता रहता है, तो मार्गणा बदलती रहती है। वैसे ये भव्य तो भव्य ही रहेगा अनादि से जब तक वो सिद्ध नहीं होता। दूसरे ये क्रम से क्षीण मोहर अयोगी केवली होने तक रहती है। क्रम से क्योंकि अचक्षु दर्शन कब तक है? बारहवें तक है, तो क्षीण मोह तक रहती है। और भव्य मार्गणा कब तक है? अयोगी केवली तक है। ये क्रम से का अर्थ होता है। दो बातें बताइए, अचक्षु दर्शन क्षीण मोह तक और भव्य मार्गणा अयोग केवली तक रहती है, और हमारा स्थिति बंध दसवें तक है, इसलिए सब ये बातें घटित हो जाती है। इसलिए इनमें सादी आदि प्ररूपणा पूर्ववत बन जाती है। इसलिए इन मार्गणाओं में उक्त प्ररूपणा पूर्ववत कही है, यानी ओग के समान बताई है। केवल भव्य मार्गणा में ध्रुव विकल्प नहीं होता, कारण स्पष्ट है क्योंकि भव्य कहा है तो वो तो ध्रुव बंध उनमें नहीं पाया जाएगा, वो तो मोक्ष जाने वाले हैं। इसलिए उनके लिए, भव्य जीवों के लिए अजघन्य स्थिति बंध को कैसा कहेंगे? अरविंद भाई बताएंगे। भव्यों के लिए अजघन्य स्थिति बंध कैसा होगा? हमने ओग में क्या देखा था? अजघन्य कैसा होता है? सादी भी, अनादि भी, ध्रुव भी और अध्रुव भी। तो भव्यों के लिए अजघन्य स्थिति बंध कैसे होगा? नहीं, क्यों? भव्यों के लिए ध्रुव होगा क्या?
अध्रुव होगा।
तो उनके लिए अध्रुव, एक ध्रुव छोड़ दो। भव्यों के लिए अजघन्य स्थिति बंध कब से था? अनादि से था। वो कैसा है? वो अनादि है। सादी भव्य जो भी उपशम श्रेणी उतरेंगे चढ़ के, उनके लिए सादी हो जाएगा। तो सादी भी हुआ, अनादि भी हुआ, और वो भव्य है तो मोक्ष जाने वाले है, तो अध्रुव हुआ, ध्रुव नहीं रहेगा, यही कह रहे। केवल भव्य मार्गणा में ध्रुव विकल्प नहीं होता, कारण स्पष्ट है, मिला ना? शेष सब मार्गणाओं में ये उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि चारों सादी और अध्रुव ही प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्गणा ही सादी होती है। ये समझ में आई बात? अरे उनके लिए जघन्य भी क्यों ना हो, वो मार्गणाओं के लिए जघन्य है, और मार्गणा ही कादाचित का होती है। कौन सी मार्गणा चलेगी? अचक्षु दर्शन और भव्य तो अनादि से थी और क्षीण मोह और अयोगी तक रहने वाली है,
ये दो ही मार्गणा।
हाँ, तो वो ओग के समान हो जाएगी। वाक्यों की चौथी लाइन नीचे से, क्योंकि अन्य सब मार्गणाएं यथासंभव बदलती रहती है या साधी है, इसलिए उनमें अनादि और ध्रुव ये विकल्प नहीं बनते। यद्यपि अभव्य मार्गणा ध्रुव है, फिर भी उसमें उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि के अनादि और ध्रुव न होने से साधि और अध्रुव ये दो ही विकल्प घटित होते हैं। अब स्वामित्व प्ररूपण। अभी तक तो हमने ये जो अलग अलग जो अध्याच्छेद उत्कृष्ट जघन्य वगैरह बात की थी, अब यहाँ उसका स्वामी बताएंगे। स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश यानी कथन दो प्रकार का है, ओह और आदेश। यानी उत्कृष्ट का कथन करेंगे, यानी उत्कृष्ट स्थितिबंध किसके होता है पहले ओह में बताएंगे, फिर मार्गणाओं में कौन उत्कृष्ट करता है उसकी बात वहां बताएंगे। उनमें से ओह की अपेक्षा, देखो पहले अध्याच्छेद में कितना होता है उसकी चर्चा की थी, तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर होता है ज्ञानवरण का, यह अध्याच्छेद में बात बताई थी। अब यहाँ वो 30 कोड़ाकोड़ी वाला बंदक कौन करेगा, उसका स्वामी बताएंगे। उनमें से ओह की अपेक्षा सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है। हमने देखा था अपने अपने उसमें वो अपर्याप्त जीवों का जो स्थितिबंध है वो कम होता है, ये संगी पंचेंद्रियों में अंत कोड़ाकोड़ी का होता है, जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है। और देखो क्या क्या लिखा है, साकार, साकार यानी ज्ञान उपयोग में है, जागृत श्रुतोपयोग से उपयुक्त है, श्रुतो उपयोग लिया, मति उपयोग भी नहीं लिया। हाँ, श्रुतो उपयोग यानी उसमें संकलन ज्यादा हो गए ना, उस संबंधी कुछ उसका चल रहा है। हाँ, साकार जागृत श्रुतोपयोग से उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिबंध के साथ उत्कृष्ट स्थितिबंध के योग्य संकलेश परिणाम वाला है, अथवा ईषत मध्यम परिणाम वाला है। ऐसा कोई एक संगी पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। ये ईषत मध्यम परिणाम वाला क्या होता है,
पल्ले के असंख्यात प्रकार के लिए जो उत्कृष्ट स्थितिबंध,
क्या क्या
वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जो उत्कृष्ट स्थितिबंध। अच्छा, असंख्यात
देखो देखो ये स्थिति के विकल्प है, अलग अलग स्थितियां बनती हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक स्थिति बनने के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमको उत्कृष्ट भागों की बात चल रही है यहाँ पर, उत्कृष्ट स्थिति बंध भी ये उत्कृष्ट परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ाकोड़ी वाला ज्ञानावरण का कौन करता है, उत्कृष्ट संकलेश वाला भी करेगा, असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम वाले जीव इतनी स्थिति बांध सकते हैं। तो देखो फिर इसको पढ़ेंगे हम, एक तो हमने देखा साकार है, जागृत है, श्रुतोपयोग से उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ उत्कृष्ट स्थिति बंध के योग्य संकलेश परिणाम वाला है। उत्कृष्ट स्थिति बंध के योग्य इतने सब परिणाम उत्कृष्ट स्थिति को बंद कर सकते हैं। तो कहते कि उत्कृष्ट स्थिति बंध के योग्य संकलेश परिणाम वाला है, अथवा ईषत मध्यम परिणाम वाला है। ईषत यानी कुछ मध्यम परिणाम वाला, यानी अति उत्कृष्ट संकलेश से भी थोड़ा कम संकलेश वाला है। क्यों? एक ही पर्टिकुलर स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ईषत यानी किंचित, थोड़ा, यानी सर्वोत्कृष्ट संकलेश नहीं है, थोड़ा कम है, ऐसा उसका अर्थ लेना है। ऐसा कौन लेना, ऐसा कोई एक, कोई एक यानी चारों गति में का कोई भी जीव होगा, कोई एक संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव क्योंकि सम्य दर्शन होने पर तो यह सम्य दर्शन छोड़ो सासादन से लेकर ऊपर अंत कोड़ा कोड़ी का ही बंद होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी है। ये समझ में आई बात? पहले तीन कंडीशन लिया था, साकार जागृत और श्रुतोपयोग वाला, और फिर उत्कृष्ट स्थिति बंध करने वाला उत्कृष्ट संकलेश या थोड़ा कम संकलेश। अब आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन है?
तो मध्यम पद।
अब यहाँ तो उत्तर प्रकृति की बात नहीं है, आयु कर्म इन जनरल है। जब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागर है तो देवकी भी बन सकती है, नारकी की बन सकती है। तो वहां मिथ्या दृष्टि ही ऐसा नहीं आग्रह रखेगी, समय दृष्टि भी बांधेगा तैतीस सागर की और मिथ्या दृष्टि भी बांधेगा नारक की। तो देखो आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो संगी है, पहली कंडीशन। सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, साकार जागृत और श्रुतोपयोग से उपयुक्त है। अब कहते तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला है या तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला है? ऊपर क्या लिखा था? उत्कृष्ट स्थिति बनने के संकलेश लिया और यहाँ तत्प्रायोग्य शब्द डाला, क्योंकि आयु का बंध मध्यम परिणाम में होता है, अति विशुद्धि में नहीं होता, अति संकलेश में नहीं होता। इसलिए तत्प्रायोग्य ने आयु के बंध के योग्य विशुद्ध या संकलेश लिया, क्योंकि देवायु बांधने वाला विशुद्ध होगा, नरकायु बांधने वाला संकलेश वाला होगा, इसलिए दोनों को लिया। फिर से पढ़ते हम, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो संगी है, सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोग से उपयुक्त है। ऊपर भी वो साकार जागृत और श्रुतोपयोग वाला लिया था, यहां पर भी ले लिया। तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला है या तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला है? और उत्कृष्ट आबादा के साथ, देखो उत्कृष्ट स्थितिबंध आयु का तभी कहलाएगा जब उत्कृष्ट आबादा होती है। हाँ, तो देवायु के लिए वंतर पूर्व कोटि कहेंगे और नरकायु के लिए भी उतने कहेंगे, वंतर पूर्व कोटि। ऐसा कोई एक मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंश योनि वाला जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। मनुष्य इसलिए लिया कि देवायु बांधने वाला तो मनुष्य होगा, क्योंकि वो तैतीस सागर की आयु तो मनुष्य ही बांधेंगे और तैतीस सागर के नरकायु बांधने वाला मनुष्य भी होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंश भी होगा। विशेषार्थ, यहाँ ओग से आठों कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध के स्वामी का निर्देश किया गया है। विशेष वक्तव्य इतना ही है कि तैतीस सागर प्रमाण नरकायु का उत्कृष्ट स्थितिबंध मूल में दिए गए विशेषणों से युक्त मनुष्य और तिर्यंच दोनों के होता है, किंतु तैतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट देवायु का बंध मात्र मनुष्य के ही होता है। वो हम कहेंगे वो तो अप्रमत्त प्रमत्त को होता है, वो बताएंगे।
एक क्वेश्चन था, ये श्रुतोपयोग लेता है ना?
हाँ, श्रुतोपयोग लिया है।
तो वहाँ पे योग कौन सा लेना है?
क्या
मनोयोग ही ले सकते हैं? मनोयोग वचन योग दोनों ले सकते
हैं? मनोयोग वचन योग का योग कोई भी योग ले सकते हैं, योग से कोई संबंध नहीं है। ये उपयोग है और वो योग अलग बात है। ये मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, उस उपयोग की बात है। यहाँ पर साकार तो लिया है, ज्ञानोपयोग तो लिया ही लिया, और ज्ञानोपयोग में भी श्रुतोपयोग लिया है। आदेश की अपेक्षा नरक गति में, नारकियों में, अभी अलग अलग मार्गणाओं में कौन स्वामी है उत्कृष्ट बंध का, उसकी बात है। सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो मिथ्या दृष्टि है, साकार जागृत श्रुतोपयोग से उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिबंध के साथ उत्कृष्ट स्थितिबंध के योग्य संकलेश परिणाम वाला है या ईषत मध्यम परिणाम वाला है? ऐसा कोई एक नारकी सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। यहाँ पर्याप्त वो भी लगा लेना, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हो तो सब जगह लागू होगा ही। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब नारकी कितने आयु बांधते हैं? तो पूर्व कोटि के। समय दृष्टि बांधते कि मिथ्या दृष्टि बांधते? दोनों बांध सकते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि है, साकार और जागृत उपयोग वाला होकर भी विशुद्ध परिणाम वाला है और उत्कृष्ट आबादा के साथ उत्कृष्ट स्थितिबंध कर रहा है, ऐसा कोई एक नारकी आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। देखो, हाँ हाँ, छह महीने का आबादा उसकी, उत्कृष्ट आबादा छह महीने की है, परंतु ऊपर जो लिखा है ना, सामान्य से हमने देखा था आयु कर्म के स्वामित्व में, ओग में स्वामित्व में विशुद्ध परिणाम या संकलेश परिणाम लिया था, और यहाँ क्या लिखे है? विशुद्ध परिणाम वाला ही लिया। बोलो अश्विन भाई, क्यों
यहाँ पे संकलेश में नरक आयु बन रही है? संकलेश में नरक आयु का उत्कृष्ट बदला होगा, उत्कृष्ट संकलेश में
कहाँ पर?
ओग में।
हाँ, यहाँ क्यों नहीं लिया? क्या नारकी के संकलेश नहीं होता?
नारकी के संकलेश होगा पर उत्कृष्ट संकलेश।
देखो देखो, नारकी कौन सी बांधते हैं? नारकी आयु कौन सी बांध रहे हैं? मनुष्य तीर, दोनों ही शुभ आयु है, ये कारण है। देवायु कहो, मनुष्यायु कहो और तिर्यंचायु कहो, तीनों ही आयु शुभ प्रकृतियां हैं, वो विशुद्धि में बड़ी बंधेगी। ख्याल में आई पर? इसीलिए विशुद्ध परिणाम वाला लिया। और वहां ओग में जब कथन करना था 33 सागर की आयु, नरकायु की भी हो सकती है, तो वो तो संकलेश में बंधेगी। देखो, विशुद्ध परिणाम वाला है उत्कृष्ट आबादा के साथ, यह आबादा छह महीना की लेना है। ऐसा कोई एक नारकी हो गया उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी आयु पे। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि, अब वहां तो तिर्यंचायु का ही बंध होगा, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला नारकी जीव, वो भी तत्प्रायोग्य विशुद्ध ही लिया, क्योंकि तिर्यंचायु है वो प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए तत्प्रायोग्य विशुद्ध। अति विशुद्ध में तो बनती ही नहीं है आयु, इसलिए आयु का बंध में तत्प्रायोग्य शब्द लगाया जाता है। परिणाम वाला नारकी जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी होता है। विशेषार्थ, नरक में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध पूर्व कोटि प्रमाण होता है, तथा प्रारंभ के छह नरकों में समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के नारकियों के यह स्थितिबंध संभव है, किंतु सातवें नरक में यह स्थितिबंध मिथ्या दृष्टि के ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्व में जाकर ही आयु का बंध होता है, तो नियम है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, शेष कथन सुगम है। यानी सातवें नरक का नारकी भी पूर्व कोटि की आयु बांध सकता है, उसका अर्थ हुआ।
उसका उत्कृष्ट आबादा काल छह महीना आपने बताया ना?
छह महीना उत्कृष्ट आबादा है। हाँ।
और ऐसा भी हो सकता, हमने सुना है कि जो नरक में सम्यक दृष्टि जीव है वो वहां जाने के बाद सम्यक तो प्राप्त करेगा।
हाँ।
और अंतर्मूर्त बाकी रहता है तब तक वो सम्यक दृष्टि हो, फिर बाद में मिथ्या दृष्टि हो।
हाँ।
तो वो आयु बांधेगा तो सम्यक तो सह बांधेगा ना?
ना, सातवें नरक का नारकी मिथ्या तो में ही आयु बांधता है, ये तो नियम है।
अच्छा, वो जो तिर्यंचा आयु बांधने वाला एक पूर्व कोटि की,
हाँ,
वो जल्दी बांधेगा और जल्दी वमन करेगा, इसका ऐसा अर्थ होता है?
ऐसा नहीं है, हर एक जीव को वहां तक सम्यक्त्व में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम अंतर्मूर्त तक उसने आयु बांधी न हो ये जरूरी नहीं है, तब तक सम्यक्त्व में नहीं रहा, पहले ही मिथ्यात्व में आया, ऐसा भी
वही
नहीं
तो मैं कह रहा हूँ ना। कि हमने क्या सुना है, हमने क्या सुना है या पढ़ा है रादर कि सातवें नरक का जो सम्यक दृष्टि जीव होता है
उसका
वहाँ जाने में कुछ कम 33 सागर
हाँ।
तो कुछ कम में 6 महीना लेना कि एक अंतर मुहूर्त लेना,
एक अंतर मुहूर्त
हाँ। अभी वो जो एक अंतर मुहूर्त वाला जो कोई नारकी मिथ्यात्व में आने वाला है वो एक पूर्व करोड़ की आयु नहीं मान सकता,
बांध सकता है, बिल्कुल बांध सकता है,
लेकिन वो 6 महीने पहले बांधे क्योंकि उसके आबादा बड़ी चाहिए ना अपने को।
उस जीव को नहीं लेना
हाँ?
उस जीव को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे,
वही तो मैं कह रहा हूँ ना,
उस जीव को नहीं कंसीडर करेंगे, अन्य जीव को करेंगे जो 6 महीना पहले आयु बांधने वाले को यहाँ लेना है।
यानी ये जो एक अंतर मुहूर्त कम 33 सागर वाला जो कोई हमने समय दृष्टि का काल देखा वो 1 करोड़ पूर्व की आयु नहीं बांध सकता,
बिल्कुल बांधता है।
अरे
यहाँ उत्कृष्ट आबादा सहित उत्कृष्ट आयु को उत्कृष्ट आयु बंद स्थिति बंद कहा, क्योंकि बंद के समय से अंतिम निषेक कहाँ पड़ा है उसको उत्कृष्ट स्थिति बंद गिनते हैं आयु में।
मैं कह नहीं रहा हूँ बराबर, या आप नहीं समझ रहे मेरी,
आप मेरी बात समझ नहीं रहे
हैं, हमारी बात आप समझो पहले,
आप ही बात आपकी बात करते हैं। यहाँ पर ये 6 महीने बाकी है
हाँ,
यहाँ तक 6 महीने है और उसने पूर्व कोटि की आयु बांधी, तो जो यहाँ पर आयु बंद करेगा उसका अंतिम निषेक कहाँ पड़ा है, 6 महीना प्लस पूर्व कोटि, तो ये उसके मैक्सिमम स्थिति कहलाएगी आयु की, आयु के निषेक पूर्व कोटि के ही बनेंगे। और कोई अंतर मुहूर्त में यहाँ आयु बांधेगा, उसने भी निषेक कितने बांधे पूर्व कोटि के, पर उसकी उसकी स्थिति कितने कहलाएगी, आयु की स्थिति यानी बंद के समय स्थिति बंद, वो उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा। जब आयु की आबाधा उत्कृष्ट होती है तभी उत्कृष्ट स्थिति बंद कहलाता है, उसकी आयु की स्थिति उतनी बांधी उसने, पूर्व कोटि की आयु यहाँ पर भी बांध सकता है, यहाँ पर भी बांध सकता है, परंतु यहाँ स्थिति बंद के प्रकरण में, आयु के उत्कृष्ट स्थिति बंद के प्रकरण में उत्कृष्ट आबाधा प्लस उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट में गिनते हैं। अब कोई जीव यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति बांधा, हम उसको उत्कृष्ट आयु की स्थिति बांधी ऐसा कहेंगे, हम हमारे रेगुलर में तो हम उसी को कहते हैं, तो यहाँ स्पेशली उत्कृष्ट आबादा सहित उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले को ही उत्कृष्ट में गिनते हैं, ये यहाँ की कंडीशन है।
उस कंडीशन के साथ ही मैं कह रहा हूँ,
उस कंडीशन के साथ पूर्व कोटि की आयु तो सभी बांध सकते, ये पहले नक्की करो अंतर्मूर्त बाकी रहो या 6 महीना बाकी रहो, पूर्व कोटि की आयु बांधते है जीव बस, अब उसके साथ उत्कृष्ट आबादा को ले लो।
लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वो तो तीरंज गति बांधेगा,
सभी जो है
तीरंचायु बांधेगा,
सातवें नरक में सभी जीव तीरंचायु का ही बंद करते हैं
हाँ, तो वही तो मैं कह
रहा हूँ, वो मिथ्यात्व में जाकर ही करते हैं
हाँ। तो आपने बराबर बताया, मुझे यही कहना था कि जो हम सम्यक दृष्टि जीव सातवें नरक का है उसको एक अंतर मुहूर्त कम 33 सागर की सम्यक
उत्कृष्ट सम्यक्त्व का काल इतना बताया है
हाँ, तो उत्कृष्ट बताया, तो मेरा यही कहना है कि वह जीव 1 करोड़ पूर्व की आयु नहीं
बांध सकता है, यही फिर भी रुक कर रहे, उसकी आबादा उत्कृष्ट नहीं है, पर उसने स्थिति कितनी बांधी पूर्व कोटि की, यही तो मिस्टेक हो रही है।
अरे वो मिथ्यात्व में जाएगा तो तीरंज बांधेगा, मतलब तीरंचायु बांधेगा, क्या सम्यक दृष्टि भी तीरंचायु बांधेगा,
फिर आप ऐसा क्यों घोटाला कर रहे हैं?
अरे हम घोटाला
वो मिथ्यात्व में कब गया, अंतिम अंतर मुहूर्त गया, सातवें नरक का सम्य दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात्व में ही आयु का बंद करेंगे। अब सम्य दृष्टि वो अंतिम अंतर मुहूर्त तक रहा, वहां जाके वो मिथ्यात्व में गया, उसने आयु बांधी, कितनी बांधी, पूर्व कोटि की बांधी,
फिर से सम्य तो प्राप्त करेगा,
क्यों करने की जरूरत है भी?
तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो उत्कृष्ट सम्यक्त्व की सम्यक्त्व का जो काल है वो एक अंतर मुहूर्त कम 33 सागर वाली बात है
हाँ, पहला
और आप 6 महीने के पहले उसको आयु बंद करा रहे, 6 महीने
को नहीं कर रहे, अन्य जिसको होता है उसकी बात यहाँ लेनी है,
वही तो मैं कह रहा हूँ जब से,
पर आप वो पूर्व कोटि की नहीं बांध सकता ऐसा कह रहे बार बार
हाँ।
फिर से वही
कैसे बांधेगा वो
पूर्व कोटि के, तो सब जो बांध रहे हैं पर उसकी आबादा कम है, आबादा हम पूर्व कोटि में से माइनस नहीं करते हैं।
हमेशा हम 1/3 पूर्व कोटि प्लस 33 सागर गिनते कि नहीं, वो उत्कृष्ट उसके आयु के अभी आपने गिना है कि नहीं पहले?
वही तो, जो बांधेगा उसको गिनते हैं क्या? जो अंतिम अंतर्मुहूर्त में कोई 33 सागर की आयु नहीं बांध सकता, देवायु की भी मान सकता है,
लेकिन वो उत्कृष्ट आयु नहीं कहा जाएगा,
वो गिनेंगे नहीं उसको, वही तो कह रहे हम। परंतु स्थिति उतरी उसी उतनी बांधी 33 सागर की, केवल आबादा में डिफरेंस है। यहाँ पर भी पूर्व कोटि की आयु बांधी उसने।
आबादा में डिफरेंस आप कबूल करते हैं ना?
आबादा हम पूर्व कोटि के एक्स्ट्रा गिनते हैं, पूर्व कोटि के अंदर नहीं गिनते हैं।
एक्स्ट्रा जो
आप जो कह रहे हैं ना, पूर्व कोटि की आयु नहीं बांध सकता, वो बात घटित नहीं हो रही है। पूर्व कोटि की आयु बांधी, पूर्व कोटि प्लस आबादा को गिनते हैं हम।
आपने जो नियम बताया कि जो हम अभी मनुष्य की बात करेंगे,
हम मनुष्य
जो क्या कहते हैं
33 सागर की देवायु,
33 सागर की सर्वांग सिद्धि की आयु बांध रहे हैं, तो वो 1/3 पूर्व कोटि पूर्व में मतलब वो बांधेगा जब बाकी रहेगा उसका मनुष्य का पर्याय।
तो बांध सकता है ऐसा को बांधेगा ऐसा मत को।
अच्छा,
ये 1/3 पूर्व कोटि और ये 33 सागर, ये पूरी 33 सागर बांधी, तो कोई अन्य जीव अंतिम अंतर्मुहूर्त में 33 सागर की आयु बांध सकता है कि नहीं बांध सकता?
बांध सकता है। तो मुझे क्या कहना है कि फिर उसके हम ऐसा गिनते हैं ना कि 33 सागर प्लस 1/3 पूर्व कोटि वो उसका उत्कृष्ट आयु का काल है, ऐसा हम सुन?
आयु का काल है ना, उसको स्थिति बंध में उसको ले जा, स्थिति बंध में उसको उत्कृष्ट गिनते है। आयु तो उतनी ही बांधी, आयु के निषेक उतने ही बने।
वैसे यहाँ स्थितिबंध का अप्लाई नहीं हो सकता है?
होता है ना, पर आप बार बार कह रहे हैं कि वो पूर्व कोटि की आयु नहीं बांध रहा है, ये आपका कथन है, ये स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि उसका
पूर्व कोटि में 6 महीने आप इंक्लूड करके बात कर रहे हो क्या? 6 अंतर्मूर्ति इंक्लूड करके कर रहे हो, निषेक पूर्व कोटि के बंदे की नहीं बंदे?
देखो, जो नारकी जीव उसकी 33 सागर की आयु लेके गया है वहाँ, वो वहां जाने के बाद सम्यक तो प्राप्त करेगा और उसका आखिर का जो समय वो 1 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर में वो सम्यक तो से गिरकर फिर 3 इंच में जाएगा, ये बात बराबर है? तो वो कब आयु बांधेगा 3 इंच की?
वो हो सकता है अगर उसको यहाँ बांधने हैं 6 महीने पहले मिथ्यात्व में गया, आयु बांधी, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, फिर लास्ट में मिथ्यात्व में गया, ऐसा हो सकता है। अब ये जो अंतिम समय तक, अंतिम अंतर्मुहूर्त तक जो समय दृष्टि रहा, वो अंतिम अंतर्मुहूर्त में बांधी, कितनी बांधी पर है ये नक्की करो।
मैं तो वही कह रहा हूँ कि वो 33 अपना 1 करोड़ पूर्व की वहाँ आयु नहीं बांध सकता।
क्यों नहीं बांधेगा?
क्योंकि वो तो आखिर तक गया ना, लास्ट में तो उसका आबादा काल छोटा रह गया।
आबादा छोटा है, तो आयु कितनी बांधी?
आबादा काल छोटा है तो उसका आबादा प्लस बद्यमान आयु ये मिलकर हम आयु का
बद्यमान आयु कितनी बांधी है?
33 सागर की।
अब पूर्व कोटि की बोलो।
अच्छा, पूर्व कोटि की, हाँ ठीक है।
तो अंतर्मुहूर्त पहले पूर्व कोटि की आयु बांधी कि नहीं बांधी?
वो बांधेंगे ये कबूल है, लेकिन आप जो मैं फिर वापस उस तरफ क्यों आता हूँ, वहां मैं समझ गया हूँ कि 1/3 पूर्व कोटि मनुष्य की आयु और वो 33 सागर इसकी, उसको उत्कृष्ट स्थिति बंद कहा गया।
उत्कृष्ट स्थिति बंद कहा, पर 33 सागर की आयु क्या अंतिम अंतर्मुहूर्त में बांध सकता है कि नहीं बांध सकता?
तो उसका स्थिति बंद छोटा रहेगा?
स्थिति बंद उसका नहीं, आपका स्टेटमेंट आयु बंद के बारे में था, पूर्व कोटि की आयु नहीं बांध सकता ऐसा आपका स्टेटमेंट था, वो गलत है। उसमें स्थिति बंध, उसमें आबादा कम है इसलिए उत्कृष्ट स्थिति बंध में हम उसको नहीं गिनेंगे, वो बात सही है। परंतु वो पूर्व कोटि की आयु बांधता है कि नहीं बांधता? बिल्कुल बांधता है, पर उसकी आबादा अंतर्मुहूर्त है और आबादा उत्कृष्ट करने के लिए जिसने 6 महीने पूर्व आयु बांधी उसी जीव को लेना है। समझ में है ना मेरा ऑब्जेक्शन किसके लिए? यानी आयु बंध के लिए वो पूर्व आबादा उत्कृष्ट होनी चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है, हम इसलिए उत्कृष्ट गिन रहे हैं।
स्थितिबंध की अपेक्षा से सोच रहा था उसका,
उसको स्थितिबंध कहो, उत्कृष्ट स्थितिबंध में हम उत्कृष्ट आबादा प्लस उत्कृष्ट आयु की स्थिति लेते हैं। आयु की स्थिति कितनी बांधी है वो कभी भी बांध सकता है, अंतर्मुहूर्त बाकी हो या 6 महीने पहले बाकी हो, पूर्व कोटि की आयु कहीं पर भी बांध सकता है। पर उत्कृष्ट हम उसी को गिनेंगे जो उत्कृष्ट आभादास सहित हो, यानी पूर्व कोटि प्लस छह महीने गिनना है हमको उसको।
तो वो स्थिति बंध की अपेक्षा से बताया था, मैं वो उसको आयु के इसमें घटित
पूर्व कोटि, पूर्व कोटि कह रहे थे, पूर्व कोटि नहीं बांध रहा है ऐसा आप घटित कर रहे थे। पूर्व कोटि बांध रहा है पर पूर्व कोटि में जो आबादा इंक्लूड करना है वो उत्कृष्ट नहीं हो रही, बस इतना ख्याल में आई ना बात
आई।
अच्छा, आपके कारण सबका क्लैरिटी हो जाएगी। देखो देखो विशेषार्थ देखते हम पेज नंबर 34 पर, यहीं पर आया था ना। विशेषार्थ, नरक में आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध पूर्व कोटि प्रमाण होता है तथा प्रारंभ के छह नरकों में सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के नारकियों के यह स्थितिबंध संभव है, किंतु सातवें नरक में यह स्थितिबंध मिथ्या दृष्टि के ही होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, शेष कथन सुगम है। और यहाँ पर हमने देखा था कि उत्कृष्ट स्थितिबंध का कौन है, तो उसके उत्कृष्ट आबादा के साथ उत्कृष्ट स्थितिबंध करने वाले को स्वामी कहते हैं। फिर भी आयु कौन बांध रहा है, तो मिथ्या दृष्टि ही आयु का बंध कर रहा है। नहीं नहीं, मगर वो छह महीने पहले उसने ऐसा भी जीव होगा ना, छह महीने पहले मिथ्या तो मैं आयु बांध रही है, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया फिर छूट गया, ऐसा भी हो सकता है। उसके मना नहीं की मैंने, मैंने ये बताया कि उत्कृष्ट आपने मना इसलिए किए कि अंतिम अंतर्मुहूर्त में पूर्व कोटि का बंध नहीं होता, ये आपके कथन के लिए मैंने मना किया। आबादा को उत्कृष्ट करने के लिए हम कब बांधी उसकी बात कर रहे हैं, पर आयु कितनी बांधी उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो अंत में भी बांध सकता है उत्कृष्ट आयु, पर स्थिति बंध में हमको आबादा को इंक्लूड करना है। तीर्यंचों में लेंगे सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध के स्वामी का कथन ओघ के समान है। यानी वो संगी पंचेंद्रिय सब पर्याप्ति का पर्याप्त, साकार जागृत श्रुतोपयोगी वगैरह सब ले लेना, आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी। अब आयु 33 सागर के बांध सकता है, नरकायु है ना,
नरक की
मिथ्या दृष्टि तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला तीर्यंच होता है। नरकायु बांध, हाँ, इसलिए देवायु बांधेगा, अपन 16वें सागर की बांधेगा, वो कितने सागर होगा बोलो।
नहीं नहीं, तो 16वें
सागर की आयु
18 सागर की,
18 सहस्रार 12वें की बता रहे
हैं, तो ये 12वें की है, वो
20 हो जाएगी ना।
हाँ, 20 सागर,
20 सागर
अगर तो 12वें की होती है तो ये 20 सागर हो जाएगी,
20 सागर हो जाएगी।
तो तीर्यन समय पर 20 सागर की आयु बन
सकती है। हाँ, 16वें सर्ग तक जा सकता है ना, 16वें सर्ग तक जा सकता है। अच्युत तक
अलग प्रण तारण अच्युत क्या
20-20 होता है। देखो तत्प्रायोग्य लिया क्योंकि आयु का बंध तत्प्रायोग्य में होता है, और संकलेश लिया क्योंकि 33 सागर की नरकायु बांधता है इसलिए। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक, यह मूल प्रकृति है ना, जो कोई बनती हो उसको यहाँ लिया। मनुष्य में हम दोनों लेते हैं, विशुद्धि और संकलेश दोनों, क्योंकि 33 सागर की देवायु भी बन सकती है नरकायु भी बन सकती है, इसलिए मनुष्य में कथन दोनों को लेंगे। तीर्यंच में हम 33 सागर वाली नरकायु ही होगी इसलिए उसको संकलेश लिया। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक, यानी तीर्यंच के बाद पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त और योनिमति उत्कृष्ट स्थितिबंध के स्वामी होते। योनिमति है थोड़ा कम स्थितिबंध करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब अपर्याप्तों में उत्कृष्ट स्थितिबंध है, है वो कितना होगा बोलो? अंतःकोड़ाकोड़ी। तो कहते जो संगी है, उत्कृष्ट स्थितिबंध लेना निचले संगी को लिया, साकार जागृत श्रुतोपयोग से उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबंध के साथ उत्कृष्ट स्थितिबंध के योग्य संकलेश परिणाम वाला है, तत्प्रायोग्य ने उसके योग्य भी लिया क्योंकि पंचेंद्रिय अपर्याप्त के योग्य उसके प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबंध के साथ उत्कृष्ट स्थितिबंध के योग्य संकलेश परिणाम वाला है, ऐसा कोई एक पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है।
निवृत्ति अपर्याप्त अंतिम समय लेना ना कि
ऐसा कुछ लिखा नहीं है?
नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अभी समय नहीं।
लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जो मार्गणा है वो लब्धि अपर्याप्तों की है, ये मार्गणा ही लब्धि अपर्याप्तों की है, ये गति मार्गणा का भेद है, यह निवृत्ति अपर्याप्त को उसमें नहीं गिना है। अरे हो गया समय। ऐसा कोई एक पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त हो गया। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो संगी है या असंगी है, साकार जागृत श्रुतोपयोग से उपयुक्त है, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त लिया है, उसमें संगी असंगी दोनों आ गए, तत्प्र असंगी भी आ गए।
सभी असंगी ले सकते हैं ना, पूर्व कोटि का आयु बांध सकते हैं,
आयु पूर्व कोटि की बांध सकते हैं, इसलिए तत्प्रायोगिक विशुद्ध परिणाम वाला है क्योंकि मनुष्य आयु बांधे या तिर्यंच आयु बांधे, उत्कृष्ट आबादा के साथ उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, यानी उसकी वन थर्ड आयु लेना लब्धि अपर्याप्त की, ऐसा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी है। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कहने से संगी असंगी दोनों आ गए थे। एक विशेषात पढ़ लेते हैं, संगी या असंगी दोनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव उनके योग्य पूर्व कोटि प्रमाण उत्कृष्ट आयु का बंध करते हैं, इसलिए आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी दोनों को बतलाया है, शेष कथन सुगम है। उत्कृष्ट आबादा उनके योग्य लेना है, बस इतना।
तो यहाँ पे पंचेंद्रिय लिया तो एकेंद्र भी पूर्व कोटि की आयु तो बांध सकता है,
बांधता है ना,
काल छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे उत्कृष्ट आयु के साथ उत्कृष्ट
मार्गणा में यहाँ एकेंद्रिय को कहाँ लिया आपने? हमारी मार्गणा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त है, यहाँ एकेंद्रिय का सवाल नहीं है। अब यही रुकेंगे हम। हाँ चावानी के ज्ञान से सूझे।